लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छोटानागपुर में कार्तिक कलीसिया की शुरुआत पर चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स की अपने परिवार वालों के साथ अंतिम मुलाकात के बारे सुना था। आज हम उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे सुनेंगे कि वे अत्यधिक पीड़ा के बावजूद विनयशील बने रहे और हर परिस्थिति को सहज ही स्वीकार किया। तो आइए आगे सुनते हैं। फादर लेबन्स ईश्वर से और प्रार्थना में अपनी सांत्वना प्राप्त करते थे। वे पूर्ण समर्पण में ही सच्ची शांति महसूस करते थे। एक बार एक डॉक्टर ने उन्हें ब्रेवरी प्रार्थना करने से रोका और मानसिक प्रार्थना करने से मना किया ताकि वे ना थकें। तब फादर लेबन्स ने कहा, डॉक्टर साहब, मनन चिंतन करना मुझे नहीं थकाता, मैं इससे लंबे समय से कर रहा हूँ। आखिर ईश्वर को याद करने के अलावा इस अकेली अंतहीन लंबी यात्रा में मैं कर ही क्या सकता हूँ। उनसे दूर रहकर मैं पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह महसूस करता हूँ। भयंकर खांसी के कारण अब छाती में अत्यधिक पीड़ा होने लगी थी, जिससे वे तेजी से कमजोर हो रहे थे। चूंकि उनके लिए खाली पेट रहना असंभव हो गया था, उनके लिए पौत्र परम प्रसाद मध्य रात्रि से थोड़ा पहले लाया जाता था। उन्होंने 25 अक्टूबर को अपनी डायरी में लिखा, पिछली रात परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने अपने फेफड़े में फटने का सा दर्द महसूस किया। मैं हिलने तक का साहस नहीं कर रहा था। अपनी सेवा में लगाए गए परिचारक से उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वे उन्हें बहुत कष्ट दे रहे हैं। जब ब्रदर ने पूछा कि वे क्या खाना पसंद करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें जो परोसा जाएगा वे वही खाएंगे। फादर लेबन्स ने अपना अंतिम पत्र अपने छोटे भाई हेनरी को भेजा जो मोसलेदे में रहते थे। पत्र में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बतलाया था कि उनका अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। पत्र में उन्होंने इस प्रकार लिखा था, मेरी स्थिति पहले की तरह ही है, अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यद्यपि खतरा तुरंत नहीं होगा, कल मैंने रोगियों का संस्कार ले लिया है। कुछ भी हो, यह एक सही आश्वासन और एक बड़ी सांत्वना है। चिंतित एवं परेशान मत होना और हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत खराब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी स्थिति के बारे अवगत कराना चाहता था। सहज महसूस करते हुए मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहना। डॉक्टर जॉनसन्स हर दिन अपने कमजोर होते मरीज से भेंट करने आते थे। अक्टूबर के अंत में फादर लेबन्स ने डॉक्टर से आग्रह करते हुए कहा, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? भविष्य में जब आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो ईमानदारी से बताइएगा कि मेरी स्थिति क्या है। डॉक्टर उनके आग्रह से सहमत हो गए। 5 नवंबर को डॉक्टर से मुलाकात के बाद फादर लेबन्स ने डायरी में लिखा, मैंने अभी अभी अपनी नोबिना पूरी की है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी स्थिति सबसे अधिक खराब है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, ईश्वर की जैसी मर्जी। 5 नवंबर रविवार का दिन था। उन्होंने रोगियों का संस्कार लिया। वे पूरे दिन शांत और एकचित रहे। रात में एक पुरोहित उनके साथ रहते थे। जिनसे मजाक करते हुए फादर लेबन्स ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्द ही चला जाऊंगा और किसी को अधिक कष्ट नहीं दूंगा। उन्होंने फादर से अपने लिए धन्य मार्गरेट मेरी की जीवनी पढ़ने को कहा। वे उन्हें बीच बीच में रुकने को कहते थे ताकि शब्दों पर चिंतन कर सकें। एक बार वे कुछ अधिक समय के लिए रुके, उसके बाद उन्होंने कहा, मैं मरने के आनंद के बारे सोच रहा था। पढ़ाई जारी रही। उसी रात को बाद में उन्होंने अचानक याद की कि वे अपने आप को पूरी तरह नहीं सौंप दिए हैं। तब उन्होंने फादर से 3 कॉपियों को नष्ट करने के लिए कहा, जिनमें उन्होंने ड्रोनजेन में कुछ लिखा था। उन्होंने कहा, मैं भुला दिया जाना चाहता हूँ, वहाँ चूल्हा है, सबको नष्ट कर दो, मैं लुप्त हो जाना चाहता हूँ। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे कुछ भी सेवा के योग्य नहीं रह गए हैं और अपने स्वामी एवं प्रभु के अयोग्य सेवक मात्र रह गए हैं। दूसरे दिन 6 नवंबर को स्थिति पहले की तरह ही बनी रही। वे अपनी छाती में बहुत अधिक पीड़ा महसूस कर रहे थे। उनकी छाती फूल रही थी और सिकुड़ रही थी। अत्यधिक दर्द के समय उनकी नजरें दीवार पर टंगे क्रूस पर टिकी रहती थी। उन्होंने एक बार अपने परिचारक से कहा, आह ब्रदर, मुझे आशा नहीं थी कि मैं अब तक जिंदा रह पाऊंगा, किंतु वास्तव में मैं इसके बारे कुछ नहीं जान रहा हूँ। जब मेरी घड़ी आ जाए तो मुझे सचेत कर देना। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटे नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
तेरा प्यार प्रभु जी दिल का अमर प्यार, तू मुझे प्यार करता। तेरा प्यार कितना अमर,
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक दोस्ती की अहमियत। लेखक है अविनाश जॉनसन। श्रोताओ, आपने दोस्ती और मित्रता के सैकड़ों किस्से कहानियां सुनी होंगी। राम सुग्रीव की मित्रता, कृष्ण सुदामा की मित्रता, जिसमें मित्रता के लिए सच्चे समर्पण को देखा गया, जहां ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजा रंक जैसे सोच का कोई स्थान न था। किंतु जैसे जैसे कलयुग की शुरुआत हुई, इंसान के दिलों में नफरत की भावना ने जन्म लिया, जहां मित्रता की पहचान अपने बराबर के लोगों में की जाने लगी। जब से अमीर गरीब का फर्क बढ़ने लगा, तब से मित्रता का सच्चा स्वरूप भी खोने लगा और खो गई सच्ची मित्रता। आज जिस तरह का वातावरण हमारे आसपास है, जहां एक दूसरे पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। आज कई लोग ऐसे हैं जो सही मित्र और मार्गदर्शक न मिल पाने की वजह से अपनी राह से भटक गए हैं और बुराई के उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां कोई आम इंसान जाना नहीं चाहता। किसी ने कहा है, दोस्ती करने में जल्दबाजी न करें, दोस्ती हो गई तो अंत तक निभाएं। सच्चा दोस्त वही है जो भरोसेमंद हो, जो सूझबूझ से हर वक्त गलत राह पर चलने से रोके, मुसीबत में ढाल बनकर उसकी रक्षा करे, जो हर परिस्थिति में मदद करने को तैयार हो। सच्चा दोस्त एक बड़ा शुभचिंतक और मार्गदर्शक होता है। श्रोताओं, अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। दोस्ती निभाने के लिए सदैव तत्पर रहें और उनका आदर करें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अविनाश जॉनसन की लिखी नाटिका दोस्ती की अहमियत।
क्यों भाई प्रताप, कल कॉलेज क्यों नहीं आया?
अरे कुछ भी नहीं यार, वो घर में कुछ परेशानी है जिसकी वजह से मैं कल कॉलेज नहीं आ पाया।
क्या परेशानी है, हमें भी तो बता।
अरे यार क्या बताऊं, तुम्हें पता तो है हम किसानों को कितनी मेहनत से घर चलाना पड़ता है, रोज कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता है।
इसका क्या मतलब है, रोज कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता है?
अरे यार, कहने का मतलब ये है कि रोज खेती में जाकर फसल उगाना पड़ता है, कटाई करनी होती है।
अरे वाह रे संगीता, तू क्या पिछले जन्म में कोई किसान थी?
उज्ज्वला, ये कोई मजाक का समय नहीं है, समझी ना?
अरे हद है यार, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, कम से कम अभी तो प्रताप की परेशानी को समझो।
प्लीज 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 प्लीज, सुनो यार, तुम मेरी वजह से, तुम एक दूसरे से मत लड़ो, ये परेशानी मेरी है।
अच्छा ठीक है, सॉरी संगीता, सॉरी प्रताप, मैं तो ना बस ऐसे ही मजाक कर रही थी।
अब देख यार प्रताप, हमारी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देना है। तू बस अपनी परेशानी बता, हम कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बता।
चलो भाई, वो परेशानी बाद में, अभी क्लास का टाइम हो गया है, क्लास के बाद बात करेंगे।
चलो चलो। हाँ भाई, अब बताओ क्या परेशानी है?
हाँ बताओ ना प्रताप, क्या परेशानी है?
बताओ।
अरे रुको, मेरे लिए भी आ चुकी हूँ भाई, मैं भी।
रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आने दो महारानी को, इनकी भी ना एक अलग ही परेशानी है।
हाँ, किसकी क्या परेशानी है?
तू भी उज्ज्वला, सुधरेगी नहीं है ना?
देखो भाई, बोला था ना, इसकी भी एक अलग ही परेशानी है।
क्या परेशानी है, मुझे भी तो बताओ। क्यों प्रताप, क्या हुआ?
हाँ प्रताप, ऐसा करना तो पहले इसको ही बता दे।
देखो दोस्तों, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। मुझे खेत खलियाने में ध्यान देना होगा, मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी होगी, और ऊपर से बाबा की तबीयत भी खराब है, वो खेतों पे जा नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ही खेती बाड़ी संभालनी पड़ेगी ना।
देखो प्रताप, जल्दबाजी में पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लेना तो ठीक नहीं है।
देख भाई प्रताप, कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे, तेरी परेशानी का तो चिंता मत कर।
हाँ प्रताप, अभी बाबा की तबीयत कैसी है, तू उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया था या नहीं?
वाह उज्ज्वला, कभी कभी तो तुम बहुत समझदारी की बात करती हो।
तुम दोनों का यही नाटक है, जब तक तुम दोनों एक दूसरे की टांग ना खींच लो, तब तक तुम दोनों का खाना नहीं पचता है ना।
अरे हाँ, सॉरी, इस बार मेरी गलती है, मैं मानती हूँ बाबा। ठीक,
चलो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो अब घर चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है।
देख प्रताप, तू परेशान मत हो, हम लोग कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। चलो अब घर चलते हैं, हम तेरे से कल बात करते हैं, ठीक है?
ओके बाय।
ओके बाय
बाय। यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रताप की परेशानी भी दूर हो जाए और उसकी पढ़ाई भी ना छूटे।
सुन अंशुल, अपन ना एक काम करते हैं, ये जो संगीता है ना, ये बड़ी पैसे वाली है, अपन ना संगीता को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसके बाप से पैसे फिरौती में मांग लेंगे। हाँ, काम आसान हो जाएगा।
मेरा बाप ना एक नंबर का कंजूस है, समझी? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। अरे यार अंशुल, प्रताप के घर और कॉलेज के बीच तेरे अंकल की फैक्ट्री है ना?
अरे हाँ अंशुल, तो अंकल से कहकर कुछ काम क्यों नहीं दिलवा देता? देख अपना प्रताप बड़ा मेहनती है और काम भी ना अच्छे से कर लेगा।
वाह यार, अब करी ना तूने समझदारी वाली बात।
हाँ ये हो सकता है, मैं अंकल से आज ही बात करता हूँ, शायद उनके पास कोई जॉब मिल जाए।
अरे भाई तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई?
अंकल वो क्या है कि नौकरी की जरूरत मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ।
ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करना कि उसे मेरे पास भेज देना, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बस खुश भतीजे, और कुछ सेवा मेरे लिए भाई?
अरे नहीं नहीं बस अंकल, आपने ये बोल दिया इतना ही काफी है।
देखो बेटा, ये जो तुम कर रहे हो ना अपने दोस्त के लिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वरना आज की दुनिया में भाई भाई का नहीं होता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
थैंक यू अंकल, मैं उसे कल ही आपके पास लेके आ जाऊंगा।
ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
सुनो दोस्तों।
क्या हुआ?
अरे मैं अंकल से मिलने गया था।
अच्छा?
अपना काम बन गया।
अरे वाह,
अंकल ने कल प्रताप को बुलाया है।
अरे वाह,
हाँ समझो उसकी नौकरी पक्की।
चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब ना हमारा दोस्त हमसे दूर भी नहीं होगा।
अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब प्रताप को कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ेगा।
हाँ दोस्तों चलो उसे ये खुशखबरी देते हैं।
अरे लेकिन आज तो बहुत देर हो गई है, ऐसा करते हैं कल मिलते हैं।
अरे हाँ चलो कल ही मिलते हैं अपन।
उज्ज्वला, प्रताप आ रहा है, उसे यहाँ बुलाओ।
ए प्रताप, अरे हम यहाँ हैं, इधर आजा।
कैसे हो दोस्तों?
अरे प्रताप तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है।
अच्छा क्या खुशखबरी है दोस्तों?
सुन, तेरी परेशानी का हल ना हम लोगों ने निकाल लिया है।
हाँ।
अब तुझे कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ेगा।
क्या मतलब भाई, जरा साफ साफ बोलो ना।
अरे प्रताप देख भाई, मैंने अपने अंकल से तेरी नौकरी के लिए बात की, उन्होंने तुझे आज मेरे साथ बुलाया है, तो हम लोग कॉलेज के बाद उनके पास जा रहे हैं नौकरी की बात करने के लिए, और तुझे साथ चलना पड़ेगा।
अरे यार मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हो?
अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते?
देख प्रताप, हम में से अगर कोई तेरी जगह पर रहता और तू हम में से किसी की जगह पर रहता तो यही करता जो आज हम तेरे लिए कर रहे हैं, समझा?
हाँ वो ठीक है दोस्तों, एनीवे थैंक यू यार।
अरे चल चल, अब थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी।
ये तुमने ठीक कहा उज्ज्वला।
चलो अब क्लास के लिए चलते हैं, क्लास के बाद हम लोगों को अंकल के पास चलना है, समझे? चलो।
अरे ये प्रताप कहाँ रह गया?
अरे क्लास तो खत्म हो गई, प्रताप आता ही होगा।
लो नाम लिया, प्रताप हाजिर। चले भाई आज तुम्हें नौकरी दिलवानी है, अंकल के पास चलना है ना?
यार दोस्तों मेरे लिए तुम लोगों ने जो कुछ किया है मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा।
चलो छोड़ो ये सब बातें, चलो अब चलते हैं अंकल के पास।
हाँ हाँ चलो चलो।
अरे वाह, अंकल ने बोल दिया प्रताप की नौकरी पक्की, कल ही आके ज्वाइन कर लो।
कांग्रेचुलेशंस।
थैंक यू दोस्तों।
दोस्ती की अहमियत, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता बोरेकर, भवानी कौल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।